ऑस्ट्रेलिया में हर साल 74 मिलियन टन कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें से केवल 60% का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, बाकी को लैंडफिल में निपटाया जाता है। रीसाइक्लिंग के विषय में शिक्षित होने से और कुछ सरल नियमों का पालन करने से कचरे से संबंधित समस्या में फर्क पड़ सकता है। हालांकि अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई रीसाइक्लिंग के महत्व को पहचानते हैं, कई लोग इस बात से भ्रमित हैं कि क्या पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। क्लीन अप ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष पिप कीर्नन कहती हैं,
There was a recent study this year that found that 89% of us think it's important, but only around 1 in 3 of us are getting it right when it comes to what we put in the recycling bin. So there is room for improvement.
रीसाइक्लिंग बिन में गलत वस्तुओं को डालने या थैले में बंद करके उन्हें रखने से बाकी रीसाइक्लिंग करने योग्य वस्तुएं दूषित हो सकती हैं और इससे पूरे बिन लोड को लैंडफिल में भेजा जा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि बहुत से लोग वस्तुओं को रीसाइक्लिंग बिन में डालते हैं, भले ही वे अनिश्चित हों कि वस्तु रीसाइक्लिंग के योग्य है या नहीं। इसे विश साइकिल कहा जाता है और यह संदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है।
The common mistakes we make are things where we think, oh, I wish that were recycling, I'm going to put it in. So things like tissues, kitchen towels, people put textiles in there, nappies. These items can contaminate the recycling, the whole truck of recycling, and cause damage. And batteries are another really important one. They don't belong in the recycling bin.
आपके क्षेत्र में किन वस्तुओं को रीसाइकल किया जा सकता है, इसके बारे में अपनी स्थानीय परिषद से जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीसाइक्लिंग के नियम न केवल राज्य और क्षेत्रों के बीच भिन्न होते हैं, बल्कि परिषद क्षेत्रों के बीच भी भिन्न होते हैं, और ये पूरे देश में ऑस्ट्रेलियाई लोगों को शिक्षित करना काफी चुनौतीपूर्ण बनाता है। ग्रीनियस बाय क्लीनवे एक निःशुल्क ऑनलाइन टूल है और इसके द्वारा स्थानीय क्षेत्र से जुड़े स्पष्ट बिन निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन एक सामान्य नियम जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए, वह है खुला हुआ, साफ और सूखा रिसाइकल कचरे को केवल कर्ब साइड रिसाइकलिंग बिन में डालना। इन रिसाइकलेबल वस्तुओं को संसाधन के रूप में सोचें, जिन्हें एक नया जीवन दिया जा सकता है।
Don't put your recyclables into a plastic bag, for instance. They need to go in clean and dry. So if you think about a jar, for instance, we need to take out any solid food from there, any liquids, separate the metal lid from the glass, and put those items separately into the bin. If you think about cardboard, that needs to be clean and dry. So if they're greasy, if that can't go into the recycling bin, it needs to go into the general waste bin.
तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु रीसाइकल करने योग्य है या नहीं? ऑस्ट्रेलेशियन रीसाइक्लिंग लेबल ARL को 2018 में पेश किया गया था, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि पैकेजिंग के किस घटक को रीसाइकल किया जा सकता है। इसमें अक्सर अलग-अलग हिस्से शामिल होते हैं, जैसे कि कैप, ढक्कन, प्लास्टिक की आस्तीन। पीप किरणन बताती हैं,
And that provides very good guidance to us as consumers. So often some rules like the spray you use in the laundry for pre-stain remover, for instance. Some of those products, the nozzle itself may not be recyclable, but the bottle may. And if it has the Australian recycling label, it will give you that guidance, and you'll know to separate those items before they go in the recycling bin.
यदि कोई वस्तु में ARL नहीं है और आप भी सुनिश्चित नहीं हैं कि ये रीसाइक्लिंग के योग्य है या नहीं, तो इसे रीसाइक्लिंग बिन के बाहर छोड़ दें, ताकि ये शेष अच्छे रीसाइक्लिंग कचरे को दूषित ना करे। जबकि नरम प्लास्टिक जैसी वस्तुओं को आपके कर्ब साइड रीसाइक्लिंग बिन के माध्यम से रीसाइकल नहीं किया जा सकता, फिर भी वे रीसाइकल होने योग्य हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको उन्हें एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर लाना होगा। एक दशक से REDcycle साइकिल सॉफ्ट प्लास्टिक को पुनर्प्राप्त करने और पुनर्उपयोग करने के तरीके प्रदान कर रहा है। सभी प्रमुख सुपरमार्केट सहित देश भर में उनके पास 1900 से अधिक ड्रॉप ऑफ स्थान हैं। रेबेका ग्लेगहॉर्न रेड ग्रुप में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मैनेजर हैं। वे कहती हैं,
4 million pieces of soft plastic are returned to recycle bins every single day. Our average is 4 grams. So that's 16,000 kilos of soft plastic saved from and diverted from landfill every single day across the country. And that's increasing and increased over 200% within the financial year from 2020. 2020 to 2021.
फ्रीजर बैग से लेकर ब्रेड बैग, जिप लॉक बैग और यहाँ तक कि बल्ब रैप्स तक, आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि आप एक अवधि में कितना नरम प्लास्टिक जमा कर सकते हैं और इन सभी को रिसाइकल किया जा सकता है। हालांकि अपवाद है कि हमें हमेशा ARL की जांच करनी चाहिए।
The main ones we can't take are anything that are full silver, it's got too high an aluminium content. We also can't take compostable and biodegradable soft plastics. The reason being is because they've got an additive in them which is deliberately designed to break that particular packaging down. Now you can imagine if we then try to use that type of plastic with that additive in it in a product like a bench seat or a bollard or something like that, it's going to actually still biodegrade.
फिर इन सॉफ्ट प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को भेजा जाता है, जहां ये फेंसिंग, फर्नीचर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल दिया जाता है। अन्य घरेलू कचरे को इकट्ठा करने के लिए परिषदों के पास निर्धारित दिन भी हो सकते हैं जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जैसे कि ई कचरा, फ्रिज और टीवी उपकरणों जैसा सामान या एक्सरे। वे सुरक्षित निपटान के लिए रसायन और बैटरी भी एकत्रित कर सकते हैं। कचरे को कुछ नए में परिवर्तित करने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मगर ये इस तथ्य को नहीं बदलता है कि हम आज भी बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन और प्रयोग कर रहे हैं। अब दुनिया भर में एक बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है जहाँ लोग वस्तुएं मुफ्त में प्राप्त करते हैं, बांटते हैं और उन्हें फिर से पुनः उपयोग में लाते हैं। अमेरिका में बाय नथिंग प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था और तब से दुनिया भर में फैल गया है। सिडनी के हिल्स जिले में इस प्रोजेक्ट समूह का प्रबंधन करने वाली लिव मैकगिनिस का कहना है कि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि उनके संसाधन कहां से आते हैं और कहां जाते हैं।
We've stopped thinking about the red bin as being a magical system where we put things in it guilt-free and they disappear. You know, that we're starting to wonder about all of those things that we threw in the red bin in the last, you know, couple of decades and the fact that they're still somewhere slowly rotting. And I think that people don't want to contribute waste in the way that they have historically.
बच्चों के खिलौनों से लेकर आपकी अलमारी में रखे विभिन्न वस्तुओं तक, आप सभी प्रकार की वस्तुओं को दूसरे समूह के साथ बांट सकते हैं।
The rules basically say that anything that's legal can be gifted, and we've actually seen an extraordinary array of things being gifted, from food things to furniture to boxes to second-hand electrical goods, and it's extraordinary. Things that are really popular are moving boxes, plant cuttings, things that you wouldn't specifically have a lot of value. Economically are things that people are often very, very happy to give and receive.
वस्तुओं का पुनरुपयोग करने से पर्यावरण पर अधिक सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है और ये समाज को भी मजबूत करता है।
When you're the beneficiary of someone's kindness on the internet who doesn't know you, has no vested interest in your life, doesn't know anything about your circumstance, is willing to give you something without strings attached, I think that that's a really positive thing.
अगर हम सभी कुछ समय के लिए देखें कि हम अपने कचरे का पुनर्उपयोग या निपटान कैसे कर रहे हैं, तो हम धरती को बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाने में कामयाब होंगे और ये बदलाव आज से शुरू हो सकता है।